प्रेम है, ब्रजवासियों का जो सबसे ऊंचा भाव है, उस भाव को उद्धव जी भी समझ सकें। जो शुद्ध रागानुगा भक्ति है, प्रेम है, उद्धव जी भी समझ सकें। और उद्धव जी तभी समझ सकते हैं जब हम ब्रज में जाएंगे, ब्रजवासियों का एसोसिएशन करें। उनके विषय में क्या, वृष्णि नाम प्रवर है, वृष्णि वंशियों में, जदवंशियों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे उद्धव जी। और मंत्री कृष्णस्य, और उनके विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि वे कृष्ण के मंत्री थे, अतरंग मंत्रणा देने वाले अतरंग व्यक्ति थे, अतरंग मित्र थे, कृष्ण के मंत्री थे और अत्यंत प्रिय उनके मित्र थे। और इसके बाद उनके विषय में शिष्य बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, तो उद्धव जी स्वर्ग में पढ़ने गए थे। यहाँ से अभी कोई पहले, अभी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले कोई इंग्लैंड पढ़ने जाता था तो उसके कहते यूके रिटर्न, वहां जब पढ़ लिया वहां की यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। तो ये तो फिर भी वो पृथ्वी पर है, ये स्वर्ग में पढ़ने गए थे। और स्वर्ग में यहाँ पर लिखा गया है बृहस्पति साक्षात शिष्य थे। बहुत लोग पढ़ने जाते हैं स्वर्ग में तो बृहस्पति स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, अपने किसी शिष्य को लगा देते हैं तो तुम पढ़ा दो, लेकिन इनको उद्धव जी को स्वयं बृहस्पति जी पढ़ाए थे। बुद्धि सप्तम, इनके बराबर कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। तो भगवान ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी तमाह भगवान प्रेष्टम भक्तम भक्तम एकांतिनम क्वचित, एकांतिक भक्त थे भगवान के प्रति, पूर्णतः शरणागत भक्त थे, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोन प्रतिमावहम, उद्धव जी आप ब्रज में जाइए, वृंदावन जाइए, वहाँ क्या करना है, पित्रोन हम लोगों के, हमारे जो पिताजी और माँ है, माँ यशोदा है और नंद बाबा है, वे बहुत दुखी हैं, बहुत दुख में है मेरे बिना, मैं वहाँ से छोड़कर आ गया हूँ, मैंने वचन दिया था कि मैं आऊँगा, मैं जान है रहा हूँ, तो बहुत दुखी हैं, आप जाइए और उनको सांत्वना दीजिए, उनका दुख कुछ कम कर दिए, आप पूरा पूरा तो नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन आपको सांत्वना देंगे, कहेंगे कि मैं फिर से आने वाला हूँ, मेरा संदेश लेकर जाएंगे, तो उनको उनके दुख को थोड़ा कम कीजिए। और इसके अतिरिक्त गोपी नाम मद वियोग आभ्यम, गोपियां हैं ब्रज की, जो गोपियां हैं वे दुख के समुद्र में निमग्न हैं, ब्रज में दुख का समुद्र है, दुख है और दुख में डूबी हुई, चारों तरफ उनके इर्द गिर्द चार दुखी होता है। तो मेरे संदेश के द्वारा मैं आपको जो वचन देता हूँ, आप उनको सांत्वना दीजिए, उनका दुख कुछ कम कीजिए, उनको सांत्वना दीजिए। भगवान ने यह कहा है कि ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जी दैहिका, गोपियों की विशेषता भगवान कहते हैं कि उन गोपियां मन मनस्का वो निरंतर मेरा चिंतन करती रहती हैं, उनके मानस पटल पर उनकी स्मृति में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण नहीं होता है, केवल मुझे याद करती रहती हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए शारीरिक जो कृत्य है, स्नान इत्यादि, भोजन इत्यादि उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें हो नहीं पा रहा है, उनसे स्नान इत्यादि दैनिक कृत्य है
वो इतना दुख में है, मेरे वियोग में इतना है कि वो दैनिक जो कृत्य है वह भी नहीं उनसे हो जाता, अथवा और भी देह संबंधी कुछ कर्तव्य होता है, धर्म ही होता है। जैसे किसी स्त्री के लिए जो कुल की मर्यादा होती है उसकी रक्षा करनी होती है, तो सब उन्होंने छोड़ दिया। लौकिक मैंने जो पारिवारिक जो धर्म है, पारिवारिक जो बंधन है, इसके साथ जो वैदिक उस सबको उन्होंने छोड़ दिया है। अपने पत्नियों को उन्होंने छोड़ दिया, अपने माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, केवल और केवल मेरे प्रति वो आसक्त रहती हैं। आप जाइए उद्धव जी, हम संशय हो गए तो उद्धव जी भगवान के संदेश को लेकर भगवान ने क्या कहा, लगता है कि उद्धव जी को कुछ बातें बताए थे लेकिन ज्यादा भगवान लीक कर दिए थे, थोड़ी सी बातें बता दिए थे और उद्धव जी से भगवान बता रहे थे तो बताने बताने में ऐसी कही गई है, नयक कही बैन न अनेक कही नयन न से। वाणी से तो बहुत कम कहे भगवान, वाणी से जो कहा वो बहुत कम कहा, ज्यादा किससे कहा, आंख से कहा। आंखों को देख कर उनमें कितना दुख है भगवान को समझ सकते, नयक कही बैन, वाणी से तो ज्यादा नहीं कहे, आंखों से, और जो आंखों से भी नहीं कह सकते, बच्चा खुचा सा हिचक हिचकी समझते है ना, इससे भगवान ने कह दिया। मैंने भगवान जब कह रहे थे तो आंखों के ऐसे विचित्र भगवान की दुख में स्थिति थी, इसके बाद उच्छ्वास हो रहा था, तो नयक कही बैन नहीं, वाणी से थोड़ी बात कही, और जो कहना था आंख से कह दिया। आंखों को देखकर उद्धव समझ सकते थे कि भगवान को कितना दुख है, और उससे भी जो आंखों से भी नहीं प्रकट हो सकता, हिचकी हिचकी समझते है ना, बच्चे रोते हैं तो हिचकी के करके सांस उसका रुक जाता है, चलता है, तो भगवान ने ऐसा कहा। उद्धव जी उनके संदेश को लेकर, उद्धव जी में एक ज्ञानी भक्त थे, उनमें एक अभिमान था, सारी युक्ति तर्क इकट्ठा कर रहे थे लव जी की, इससे ऐसा नंद बाबा को मैं संतुष्ट कर दूंगा, ऐसे गोपियों को संतुष्ट, ऐसे गोप सखाओं को संतुष्ट कर दूंगा, विद्वान थे, यह तर्क दूंगा, यह लॉजिक दूंगा, यह युक्ति दूंगा, यह उदाहरण दूंगा, सबको शांत कर दूंगा। तो एक तरह से ज्ञान की गठे सर सारा भर कर, और ज्ञानी तो थे, अभिमान तो था ही ना, बृहस्पति जी का शिष्य, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत ज्ञानी, उनको लगता था कि हमारे लिए तो गोपियों को समझा देना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उद्धव जी जब चले, ऐसा वर्णन किया गया है कि उद्धव जी सुबह में प्रस्थान किए थे, और उद्धव जी रथ से गए थे, रथ पर चढ़ कर गए, लेकिन यही मथुरा की सीमा से बाहर हुआ उनका रथ, यही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किए, तो उनको लगने लगा कि हमारा जो ज्ञान की गठरी है वो छूट रहा है, ज्ञान जो संजो कर रखे थे कि ज्ञान की मान ली गठरी है, तो लगता था कि अब मतलब उतनी युक्तियां धीरे धीरे भूलने लगी, कि यही वो प्रवेश किए तो जो ज्ञान का अभिमान था, शुष्क हृदय था, ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं प्रेम से प्लावित होने लगा, और ज्ञान की सारी युक्तियां सारा जो कुछ लॉजिक इकट्ठा किए थे लगता है कि भूल रहा। एक कवि ने कहा है कि जब वृंदावन में प्रवेश किए तो वृंदावन के जो वृक्ष थे झाड़ियां की कटीले, उनके ज्ञान की गठरी को लेकर फाड़ फूट कर फेंक दिया। तो उद्धव जी को लग रहा था कि तो मैं तो खाली हो गया, सब कुछ जो याद किया था सब भूलता जा रहा है, प्रवेश किए और यहाँ की भूमि के प्रभाव से उनका हृदय जो ज्ञान से शुष्क था वो भक्ति रस से परिपूर्ण तो अप्लावित होने लगा, और वो ब्रज की महिमा के विषय, ब्रज का महात्म के विषय, भूमि के विषय में आकर्षित होने लगे, ब्रजवासियों के प्रति आकर्षित होने लगे। फिर भी उद्धव जी इतने चल रहे थे तो घोड़े को हाँक नहीं रहे थे, घोड़े वैसे इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, करते करते शाम के समय वे प्रवेश किए थे, अंधेरा हो गया था, थोड़ा अंधेरा हो जाता मैं यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि गाय भगवान तो नहीं थे लेकिन दूसरे जो गोप सखा थे गायों को लेकर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, और वो जानबूझकर थोड़ा देर करके गए, क्योंकि अभी समय तक उनको ऐसा सर लज्जा आने लगती थी, मैं नंद बाबा को क्या सब कह पाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, और जो गोपियां रो रही हैं उनको कैसे मुंह, तो रात्रि में चलना ठीक है, तो थोड़ा अंधेरा हो गया तब गए। जब वहां गए तो उनकी स्थिति क्या थी, नंद बाबा के रास्ते में पूछते थे, कभी आए थे नहीं थे नंदगांव, कभी आए नहीं थे, तो रास्ते में पूछते थे कि नंद महल की नंद बाबा का घर किधर है, कई लोगों से पूछा, तो कुछ लोग तो बोलते ही नहीं थे, ऐसा आंखों में ऐसा निराशापन भरा हुआ है, लगता है कि गूंगे हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन एक तो बोलना चालू किया तो है कि उन्होंने बताया कि आपको यदि नंद बाबा के पास जाना है, माँ यशोदा के पास जाना है, देखिए नदी देख रहे हैं ना, धारा आ रही है उधर से, इसी को पकड़ लीजिए और वहाँ तक पहुँचे, पूछने की जरूरत नहीं है, नदी थोड़ी सी छोटी सी नदी, क्या कहते हैं सिंचाई करने के लिए पानी बहता है वो नाला है, सिंचाई करने के लिए ऐसा बना देते हैं ऐसा पानी है। नाला तो बड़ा होता है ना, छोटा सा ऐसा नाला गंदा वो करने साफ ऐसे नहीं, खेती में से डाल देते हैं पांच और पांच है देखें, तो ऐसा ही एक बहुत पानी का बह रहा था, साफ पानी था, घना नहीं था, तो लोगों ने बता दिया कि इधर घर मत, इसको पकड़िए और उसे किनारे किनारे चले जाइए, एक नंद बाबा के घर में पहुंच जाएंगे। अरे नंद ऐसा नदी तो पहाड़ से निकलती है, कहाँ कहाँ से उनके घर से नदी निकलती है ना, उनके घर से नदी, उनके आंगन से ही नदी प्रवाहित होती है, वहीं से निकलती है, तो वो कैसे ऐसे है कि नंद बाबा को माँ यशोदा का एक पुत्र था, लड़का था, और एक और भी उनके साथ बच्चा था वसुदेव जी का, उनके मित्र का, तो दोनों चले गए मथुरा चले गए, इनसे बता रहे थे एक अनजान व्यक्ति मथुरा चले गए हैं, और उसी दिन से नंद बाबा माँ यशोदा और कुछ नहीं काम है, केवल रोती रहती हैं, तो रोती रहती हैं तो दोनों से आंसू है, तो आंसुओं की धारा बह रही है, यह जो नदी बह रही है नाला बह रहा है स्वच्छ जल का, यह और कुछ नहीं है, नंद बाबा माँ यशोदा रो रही हैं, तो रोती हैं तो इतना रो रही को आंखों से इतना आंसू है कि आंसुओं से सिंचाई हो जाती है, खेत में पानी देने की मोटर चढ़ने की उत्सुक है। उधर जी वहाँ पहुंचे, श्रीमद भागवत में ऐसा वर्णन किया गया, जब उधर जी वहाँ पहुंचे नंद बाबा ने स्वागत किया, और इसके बाद माँ यशोदा ने स्वागत किया, ये भी पता लगा कि ये भगवान के मित्र हैं, भाई हैं, चचेरे भाई लगते थे, वसुदेव जी के भाई के लड़के थे, तो चचेरा भाई थे, भाई इतना भाई और मित्र हैं नंद बाबा, कितना आदर हुआ होगा। यहाँ श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट वर्णन है कि इतने बड़े अतिथि थे, अतिथि देवो भव, लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उद्धव जी को खिलाया गया परमान कहते, खीर खिलाया गया, जब से भगवान चले गए थे तो कोई दूसरा चीज नहीं बना, कोई सब्जी नहीं बना था, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा व्यक्ति, कई मैंने भगवान गए हैं वर्षों के बाद इतना व्यक्ति आया है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन माँ यशोदा ने कोई कुकिंग नहीं किया, थोड़ा सा दूध स्वाभाविक ढंग से गर्म कर दिया, उसमें चावल डाल दिया और वही उनको दिया गया, क्योंकि जिस दिन से भगवान गए थे तो कुकिंग नहीं हुआ था, जिस दिन भगवान छोड़ कर चले गए थे तो नंद भवन में एक दिन भी भोजन नहीं बना था, ऐसे इस तरीके स्वभाव, थोड़ा सा कहीं दूध कभी पी लिए नहीं पी लिए, माँ यशोदा भी इतने दिन तो उपवास चला था, तो किचन में कुछ था ही नहीं, बन ही गया था, जो क्या कहते हैं जो मकड़ी के झाल जाले लगे हुए थे, तो जैसे तैसे करके बहुत आंसुओं को रोकते हुए जैसे तैसे माँ यशोदा ने उद्धव जी के लिए खीर थोड़ा तैयार किया। अब खीर में भी आप अपेक्षा आप मत कीजिए कि काजू डाली होगी, किशमिश डाली होगी, कैसे ऐसे गर्म कर दिया, चावल डाल दिया, वो भी बहुत प्रयास करके, भगवान का मित्र है, भगवान का भाई है कृष्ण का, तो हमारे कृष्ण के समान ही अप्रिय है, किसी प्रकार अंतर नहीं है, तो फिर इसके बाद नंद बाबा पूछते रहे। नंद बाबा ने बहुत सी बातें पूछी है। एक बात नंद बाबा ने पूछा है, माँ यशोदा ने पूछा है कि कृष्ण कभी मेरे मुझे तो याद करने की कोई प्रश्न नहीं है डायरेक्ट, लेकिन शायद कृष्ण को उनकी गौवें बहुत प्रिय थी, गोप सखा बहुत प्रिय थे, अथवा गिरिराज गोवर्धन बहुत भगवान को प्रिय थे, कृष्ण को बहुत प्रिय थे। तो उन लोगों को यदि कृष्ण कभी याद करते हैं, करते होंगे, गिरिराज जी का याद करते होंगे, जमुना जी का याद करते हैं, अपने गोप सखाओं का याद करते होंगे, गायों की याद करते हैं, तो उसी क्रम में करते करते क्या मेरा भी याद करते हैं कृष्ण? नंद बाबा कहे डायरेक्ट से याद करने का प्रश्न ही नहीं है। नंद बाबा रोते रहे रात्रि भर। ऐसा भागवत में वर्णन है कि नंद बाबा रोते रहे, माँ यशोदा रोती रही और ये भी रोते रहे, सोए नहीं रात। तो यह पूछा कि क्या कभी कृष्ण हमको याद, डायरेक्ट नहीं, उनको याद करते करते हो सकता है कि उनके स्मरण पथ पर मैं भी आ सकता हूँ। नंद बाबा रोते रोते यही बात कह रहे थे कि ब्रज में था तो यहाँ पर हम लोग बहुत कृष्ण को तंग किया। सुबह में भेज देते थे गाय चराने के लिए, दिन भर गाय चराता था, और जितने ब्रजवासी लोग थे वो लोग भी उसको चोर यह कहते रहते थे, कहते थे ना। तो हमने तो उसका कुछ सेवा नहीं किया, बल्कि उसे जब सेवा करने लायक थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने गायों के पीछे भेज देते थे दिन भर जंगल में, वह करना। और ये गोप सखा लोग सोने भी नहीं देते थे। जैसे कृष्ण आप भोर में 2 बजे 1 बजे ही जब का चारों तरफ घेर लेते थे, दिन भर गाय चराया हुआ है, रात्रि को थोड़ा सोया तब तक गोप सखा लोग तुरंत लोग क्या करते थे, 1 बजे 2 बजे आकर जगाओ, एक नींद नहीं लेने देते थे। यह सुनकर माँ यशोदा तो रो ही रही थी, रुदन और भी बढ़ गया। माँ यशोदा को याद रही थी कि मैंने उसे मारा था, मैंने उसे उखल में बांधा था, तो उसको याद करके उखल बंधन की लीला के याद करके माँ यशोदा कह रहे, लगता था कि अब दृढ़ हो जाएगा, फट जाएगा। तो जैसे तैसे उद्धव समझाने का प्रयास कर रहे थे, उद्धव जी समझाने के प्रयास में एक बात कह दी नंद बाबा से और माँ यशोदा से, उनके कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक उच्च कोटि का प्रेम था उसे उद्धव जी ने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि आपके समान भाग्यशाली कोई व्यक्ति पृथ्वी के तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आप हैं। कौन है सबसे भाग्यशाली व्यक्ति? नंद बाबा है, माँ यशोदा है। अब इतना तो सुनते ही आप लोगों को शायद कैसे सुने होंगे, गौर गोविंद महाराज जी, इतना सुनते ही तो नंद बाबा क्या कहते हैं, अरे हम तो अभी समझते थे कि बृहस्पति जी का शिष्य है, बड़ा ज्ञानी है, तो हमसे भी जैसा पागल है, तो पागल हमारे पास आ गया। हम तो समझते थे बड़ा विद्वान है, लेकिन ये तो बहुत पागल हमारे घर में आया हुआ है। क्या गलती किया इसने, क्या पागलपन किया? दुनिया का जो सबसे बड़ा, जिसका भाग्य टूटा हुआ है, जो सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है, भाग्य टूटा समझते हैं ना, एकदम दुर्भगा व्यक्ति है, उसको यह कह रहा है कि सबसे बड़े भाग्यशाली है। तो इसको मैं ही विरह में था और उसके भगवान के बिना, कृष्ण के बिना मैं ही पागल है, तो ये तो हमसे भी पागल है। ये सबसे खराब, सबसे निर्धन, सबसे भाग्य जिसका फूटा, उस व्यक्ति को कह रहा है कि सबसे बड़े भाग्यशाली है। तो नंद बाबा ऐसे श्रीमद भागवतम में पूरी रात्रि बीत चुकी, नंद बाबा पूछते कृष्ण के गुणों का याद करके, कृष्ण की लीलाओं का याद करते रोते रहे। माँ यशोदा रोती रही, ऐसे रोते रोते सुबह हो गया, प्रभात हो गया। सुबह हो गया तो उद्धव जी को स्नान इत्यादि करना है, सुबह का जो कृत होता है। तो ये रथ पर आए थे और सोने का रथ था, बहुत बढ़िया रथ था, शायद वही रथ था जिससे ये गए हुए थे। और पुरुष जी जिस रथ से लेकर सोने के रथ से ले गए थे, अभी सोने का रथ था। तो सुबह में रात्रि में नंदगांव में ज्यादा पता नहीं लगा। कितना कुछ लोगों को रात में पता लग गया कोई रथ आया हुआ है, तो रथ आया हुआ है इसे कुछ अनुमान नहीं कर सके। नंद बाबा और निकट परिवार के लोगों को, नंद बाबा माँ यशोदा को तो पता था। तो सुबह में उद्धव जी जमुना जी में नित्य कृत स्नान इत्यादि करना था, स्नान करने के लिए गए थे। तो जब नंदगांव के लोग जगे, तो विशेषकर गोपियां जगी, तो उन्होंने रथ को देखा। सोने के रथ से कृष्ण गए थे और ठीक वही शायद वही था, तो उसी रंग का कम से कम रथ था। तो रथ को देखने से ब्रजवासियों को, गोपियों को एलर्जी जैसा होती थी। तब तो सब लोग देख ले, बस बस अक्रूर आया हो, अक्रूर ही आया होगा। रथ देखे थे, अक्रूर रथ लेकर आया था, फिर रथ किसी का गया ना हो ना वही आया। तो अनुमान करके फिर किसी आया हुआ है। एक बार तो हम लोगों को प्राण को ले गया, अब शायद माने हम लोगों का जो जीवन धन थे कृष्ण को ले गया। अब लगता है कि इसलिए है कि इसके अपने जो इसके जो क्या कर रहे पितर लोग हैं ना, इसके पितर समझते हैं ना, पूर्वज जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको श्राद्ध करने के लिए हम लोगों का शरीर उसमें अर्पित करने के लिए आया था। ऐसे अनुमान कर रहे थे रथ वही वैसा ही रथ है। तो सब अक्रूर को ही गाली देना चालू किए, फिर से कुछ ना कुछ उत्पात करने के लिए आया हुआ है। एक बार तो ले गया कृष्ण बलराम को और फिर कुछ ना कुछ उत्पात करने के लिए। अक्रूर से उनको बहुत घृणा थी, द्रोह पूरी ऐसे कर रहे थे, बात कर रहे थे। तब तक उद्धव जी स्नान इत्यादि करके इधर से लौट रहे, तो दूर से गोपियों ने देखा और लोगों ने देखा, गोपियों ने देखा तो उद्धव जी की वेशभूषा ठीक कृष्ण 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 का जैसा वेशभूषा जैसा वस्त्र धारण करते हैं वह भी व्यक्ति सांवला कृष्ण का शरीर है, तो उद्धव जी का भी सांवला शरीर था, इतना मिलता जुलता है। और वस्त्र भी उद्धव जी के विषय में प्रसिद्ध बातें हैं। उद्धव जी जो भगवान छोड़ते थे वस्त्र उसी को धारण करते थे, भगवान माला छोड़ दिए तो उसी को माला को पहनते थे, भगवान ने कुर्ता निकाल दिया पुराना हो गया तो उसी को, अपने लिए नया कोई सिलाई नहीं होता था। तो वेशभूषा एकदम सिमिलर था। तो देख रहे थे तो उन्होंने पहले तो लगा कि कृष्ण ही है, लेकिन नजदीक में आने पर उनसे मयूर पिक्ष नहीं है, कुछ विशेष अवस्था उस अवसर में तो समझ गए कि ये कोई दूसरे हैं। तो गोपियां धीरे धीरे उनके पास गईं। अच्छा हम थोड़ा सा उसमें अचानक जब यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है, उद्धव जी जब जा रहे थे ब्रज में जब प्रवेश किए, तो उन्होंने देखा कि ब्रज आनंद से युक्त है, उनको ऐसा किसी प्रकार की कमी नहीं दिखी। किस तरह से स्वस्थ गाय हैं, ब्रज से लौट रहे वृंदावन से वन से लौट रही थी, बछड़े एकदम स्वस्थ थे सुंदर थे, और जो गोप सखा थे वे खूब बढ़िया से प्रेम से कृष्ण की लीला का गान कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे, ब्रज इतना सुंदर इतना आकर्षक लग रहा था, उनको लगा किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं, और सचमुच किसी प्रकार का दुख नहीं था। पक्षियों पक्षियां पक्षी गण थे और सब कुछ थे। हमें तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंद प्रीत प्रिसज वासुदेव देव धियार। नंद बाबा ने जो स्वागत किया था तो ऐसे ही कि परम समागतम देखा उद्धव जी को आए हुए, तो उनको अपने हृदय से लगा लिया। यह भी जाना कृष्णस्य अनुचरम, उनको पता लगा कि कृष्ण के अनुचर हैं, कृष्ण के प्रिय हैं, तो नंद बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई और परिश्वर्य अपने हृदय से उनको लगा लिया और उनकी वैसे ही पूजा की, वासुदेव धिया, वासुदेव धिया में ऐसे ही मैंने भगवान आ गए हैं, अतिथि देवो भव, एक अतिथि आ गए तो स्वयं भगवान किसी के घर में आ जाए, जितनी प्रसन्नता होनी चाहिए उतनी प्रसन्नता नंद बाबा को ही थी। यहाँ पर लिखा भोजितम परमानेन, परमान परमान ही कह जाता है बंगला में, परमान खिलाया गया, परम अन्न, इतने बड़े अतिथि, सब्जी बनना चाहिए था ना, रोटी ही बनना चाहिए था, पूरी ही बनना चाहिए, बहुत सब, लेकिन वो कुछ नहीं। जो कुछ हो हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर गोपियां आ गई, यहाँ से कट कट तो गोपियों ने देखा, पहले तो यहाँ के भगवती उदते सूर्य नंद द्वारी ब्रजो कसह, नंद बाबा के द्वारे पर आपको थोड़ा सा पता लग गया था कि कोई विशिष्ट अतिथि आए हैं, तो नंद बाबा के दरवाजे पर सुबह में ब्रजवासियों की भीड़ लगने लगी। भगवती उदते सूर्य, सूर्य उदित होने पर सुबह में उनके दरवाजे पर बहुत नंद बाबा के घर पर भीड़ लगने लगा। दृष्ट्वा रथम सात कौंभम, ब्रजवासियों ने देखा सुबह में रथ है, रथ कैसा है, सोने का रथ है। कस्य अयमिति, लोग पूछते यह किसका रथ है, ऐसे व्यंग कह रहे थे, उनको सबको शक था कि यह अक्रूर आया हुआ है, पूछ रहे थे ये किसका रथ है, कौन आया हुआ। अक्रूर आगत किमवार, लोग पूछते थे दूसरे से पूछते थे, किसको पता नहीं अक्रूर आया है क्या, फिर से अक्रूर आगतम किमवार, यह कंसस्य अर्थ साधक, कंस का अर्थ साधक है, कंस का आदमी है, कंस का काम बनाने वाला। ये ननी तो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन, अक्रूर ही कमल लोचन भगवान कृष्ण, कृष्ण को मधुपुरी में मथुरा में ले गया था, उसी का तो रथ नहीं। किम साधई, अरे एक बार तो लेकर अपना मालिक का तो कहा, हम लोगों का तो सत्यानाश किया ही, यह व्यक्ति अक्रूर, कंस का भी इसने हित जो किया तो पता ही है, हम लोगों का तो सत्यानाश किया, लेकिन जो सोचता था कि कंस का बड़ा, तो कंस का तो कर दिया, अब हो सकता है कि कंस का श्राद्ध से करना होगा, प्रेत कर्म करना होगा, तो उस समय तो ले गया यहां से कृष्ण को, तो वहां जो घटना घटी तो मालिक का तो काम कर दिया, अब उसका प्रेत कृत्य हो, निष्कृति, प्रेत कृत्य मरने के बाद कुछ कर्म। इति श्रीमान, तो शायद अब कुछ उसको जरूरत होगी कंस का श्राद्ध कर्म करने के लिए, श्राद्ध कर्म के लिए आया हुआ, तो शायद हम लोगों को ले जाएगा, तो हम लोगों को कम से कम प्राण ले जाएगा, उसी को अर्पित कर देगा कंस। ये बातें हो रही थी और उद्धव जी आए हुए थे, जमुना जी में स्नान कर ले, जमुना जी से लौटे, कृष्णानुचरम प्रजस्त्रिय प्रलंब बाहू नवकंज लोचनम, बातें रथ के सामने बातें ही हो रही थी, तब तक स्नान स्नान करके तिलक उलक करके उद्धव जी आए, तो तम दीक्ष उन्हें समझ गया कृष्णानुचरम, कृष्ण का अनुचर, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले, प्रलंब बाहू, गोपियों का ध्यान गया कि बाहें अजान बाहु, अजान लंबित भुजाओ, घुटने तक जिसकी भुजा जाती है, जो घुटने को पकड़ सकता है अपने हाथों दोनों को, एक तरफ का नहीं, बैठ कर नहीं खड़ा होकर, तो उसको अजान बाहु कहते हैं, तो उनको प्रलंब बाहु नवकंज लोचनम, उद्धव जी की आंखें कैसी थी, नवकंजल सद्य तुरंत तुरंत जो खिला हुआ पद्म पुष्प है, देर से खिला हुआ दो तीन दिन के तो थोड़ा मलिन हो जाता है, लेकिन अभी तुरंत जो कमल खिलता है और जैसे उसमें सौंदर्य था, सौरभ था, सौ कुमार था, सभी उनकी आंखों में था। नवकंज लोचनम और पीताम्बरम, कपड़ा कैसा पहने थे, पीला रंग है। गोपियां देखे, गोपियों की आंखों से सुखदेव गोस्वामी पढ़ने, गोपियां कह रही है कि पीताम्बरम, उद्धव जी पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र, पुष्कर मालिनम और माला पहने थे। किस चीज की माला थी, किस चीज, कौन सी माला, पुष्कर कमल का उस दिन पहने थे, और भी माला होती है लेकिन उस दिन गए थे तो पुष्कर मालिनम कमल पद्म पुष्प की माला थी। लसन मुखार मुख सुंदर लग रहा था, प्रसन्नता उसमें हास्य था, और मणिमिष्ट कुंडलम मणियों के कुंडल लगाए थे और कुंडल बढ़िया से पॉलिश किया गया था। अगर भगवान को श्रृंगार किया जाए पॉलिश करते हैं ना, ऐसे मणि का भी हो सोने का भी तो मलिन पड़ जाता है, लेकिन एकदम खूब बढ़िया से उसको पॉलिश किया गया था। सुचिस्मितां सुचिस्मिता है तो जो गोपियां देख रही थी तो वो पूछने लगी, यह व्यक्ति इतना सुंदर जिनका रूप है वो कौन है, कहां से आए हैं, यह एकदम कृष्ण जैसा वेशभूषा बना है, यह व्यक्ति कौन है। इस तरह से गोपियों के विषय में, गोपियां उनके विषय में बातें कर रही थी। इसके बाद और नजदीक आए तो गोपियों को पता लग गया कि भगवान के संदेश वाहक हैं, उनका मैसेज लेकर मैसेंजर हैं कृष्ण के। विज्ञाय संदेश हरम, संदेश कृष्ण का संदेश लेकर हम लोग आए, रमापते हैं तो सर व्यंग है रमापति, पहले तो गोपीपति कहलाने कहलाते थे, अभी रमापति लक्ष्मीपति के ये संदेश वाहक हैं। तो ऐसे गोपियां जानिमुष्टाम जदुपते पार्श्वम समुखम, गोपियां उनके पास गई और कृत हुआ औपचारिकता, शिष्टाचार प्रणाम एक दूसरे को करने का, उन्होंने भी प्रणाम किया, जानते थे कि ब्रज की गोपियां हैं श्रेष्ठ हैं, तो उद्धव जी ने भी प्रणाम किया, गोपियों ने भी उनको प्रणाम किया। तो गोपियां की जानिमुष्टाम जदुपते पार्श्वम समुपागतम, गोपियां कहती हैं कि हम लोग समझ रही हैं, जान रही हैं कि आप जदुपति के कृष्ण के पार्षद हैं, आप भगवान के पार्षद, कृष्ण के पार्षद हैं। भत्रे भर्त्रे यह प्रेषित, आपके स्वामी ने, भगवान ने, कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है। पितरो भगवान प्रिय चिकित्सया, भगवान ने आपको क्यों भेजा है, पिता के मां यशोदा और नंद बाबा के प्रिय के लिए, उनको कुछ भेजना होगा, कुछ संदेश देना होगा, इसलिए आप आए हुए हैं। गोपियां कहते हैं आप किस लिए आए हैं, कृष्ण ने आपको भेजा है, किस लिए भेजा होगा, नंद बाबा और मां यशोदा को कुछ कहना होगा। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न विचक्षण, गोपियां अन्यथा माता पिता के अतिरिक्त नंद बाबा और यशोदा के अतिरिक्त हम लोग नहीं समझते हैं कि कृष्ण किसी को स्मरण, उनके स्मरणीय कोई है भी यहाँ पर। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुने रपी सुदुस्तेजा, गोपियां कहते हैं कि जो स्नेह का बंधन है, प्रेम का बंधन है, विशेषकर पारिवारिक जो संबंध है, प्रेम है, यह बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुस्तेज है, और जो प्रेम है ना उसमें कोई दम नहीं होता है। गोपियां का जो प्रेम है माता पिता का ब्लड रिलेशन, तो वह बड़े बड़े मुनि लोग भी नहीं छो पाते हैं। तो कृष्ण भी नहीं भूले होंगे अपने माँ को, माँ यशोदा को, नंद बाबा को नहीं भूले होंगे, क्योंकि स्नेहानुबंधो बंधुना जो पारिवारिक प्रेम होता है, एक दूसरे से स्नेह होता है। मुनि लोगों के लिए घर द्वार को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर निरंतर माता पिता का याद करते रहते हैं। मुनि के लिए भी दुर्लभ है, मुनि के लिए भी छोड़ना मुश्किल दुस्सेध है। और अन्येषु अर्थ कृता मैत्री यावत दर्थ विडम्बनम। गोपियां एक बात कहती हैं कि परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी से जो प्रेम किया जाता है तो वह यावत अर्थ विडम्बनम। पारिवारिक जो प्रेम है वो तो प्रेम है, लेकिन दूसरे से ज्यादा प्रेम किए किस लिए किया जाए? अर्थ विडम्बनम। अर्थ विडम्बन कुछ स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं लोग, दुनिया के जो प्रेम का भंडाफोड़ कहते हैं। ये गोपियां कह रहे हैं अन्येषु अर्थ कृता मैत्री, दूसरे से जो प्रेम किया जाता है इस दुनिया में अर्थ कृता किसी प्रयोजन के लिए, और वह अभी प्रेम सचमुच प्रेम नहीं किया जाता है। अर्थ विडम्बनम नाट्यम, जैसे ऐसा नहीं है कि दूसरे से प्रेम किए हैं शायद अर्थ के लिए तो उसके लिए किए हुए हैं, वो भी होता नहीं। विडम्बनम का अर्थ होता है नाटक, जैसे नाटक में ड्रामा में एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है तो प्रेम नहीं होता है ना, कि होता है कोई माँ बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं नाटक के समय, एक दूसरे को रोते हैं, लेकिन वो कैसा प्रेम है? दिखावे के लिए। अन्येषु अर्थ कृता मैत्री, दूसरे से मित्रता की जाती है परिवार के अतिरिक्त। अन्येषु अर्थ कृता मैत्री यावत दर्थ विडम्बनम। पहला तो है कि ऐसा होता है कि प्रयोजन के लिए, लेकिन वह प्रेम नहीं है, वह भी है प्रेम का दिखावा है, नाटक है। ऐसा नहीं कि भाई जब तक स्नेह जब तक काम बना नहीं उस प्रेम करने लगे, वह भी नहीं होता है। कुंभी स्त्री सुर कृता यदवत सुमनस। कहा गया कि विशेषकर कुछ स्त्रियां होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बड़े प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वह प्रेम होता नहीं है, नाटक होता है। और वह नाटक भी जब अर्थ सध गया तो नाटक भी नहीं करते हैं, मैंने ऐसा हो गया कि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया तब भी कहते भी नहीं। अब जानते हैं ना, एक तो होता ही नहीं है, उतना ही देर के लिए कहते हैं, नाटक करते हैं कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं दूसरे के ऊपर, जब सध जाता है तो ऐसा भी चलो भाई अर्थ निकल गया तो क्यों कहते रहे नाटक भी, तो नाटक ही बंद कर देते, झगड़ा कर ले। स्त्रियों का जो पुरुषों से प्रेम है, अथवा पुरुषों का स्त्रियों से, यहाँ पुरुषों की बात, स्त्रियों का जो पुरुषों का स्त्रियों के प्रति प्रेम है, यह प्रेम है नहीं किसी खास प्रयोजन के लिए है, और वह प्रयोजन के समय भी एक तो नाटक मात्र है। यह सुमन से सब सबके आप देखते हैं, गोपियां कहते हैं कि जो भंवरे होते हैं तो लगता है कि फूलों से प्रेम कर रहे हैं, जाते हैं भन 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 घूम घूम कर उसे बैठे रहते हैं, देखते हैं ना भ्रमर लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको फूल को तो लगता है कि अरे हमारे बड़े प्रेमी इकट्ठा हो गए हैं हमारे से प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लेना होता है, यही मधु ले लिए बस, उसका भ्रम नहीं है। भगवान फूल को भ्रम हो जाता है कि भाई हमारे प्रेम हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं, गाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, हमको छोड़कर नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उसको प्रेम नहीं। जब उनको मधु मिल गया इकट्ठा कर लो राग क्या कहते हैं पराग इकट्ठा कर लो बस चल देते हैं। इसको निस्सत्वम त्यजति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा। वेश्याएं गणिका वेश्याएं किसी पुरुष से प्रेम करती है तो लगता है कि बड़ा प्रेम कर दे, लेकिन जब उसका धन समाप्त हो जाता है, जब तक तो पैसा देता है तब तक लगता है कि वो बहुत प्रेम कर रही थी, बहुत प्रेम कर रही, यही वो पैसा उसका देना बंद हो जाता है बस छोड़ देती। अकल्पम निरपतिम प्रजा, और कोई राजा है शासन करता है पालन पोषण करता है तो खूब प्रेम करते हैं, लेकिन बेचारा किसी कारण से नहीं कर पाता है तो प्रजा छोड़ देती है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले बहुत प्याज महंगा हो गया था तो साथ नेक्स्ट इलेक्शन हुआ शासन गिर गए, ऐसा लगता है कि बहुत जय जय नेता को, लेकिन आपका पालन नहीं करते हैं, दूसरे इलेक्शन में जाओ। अथवा जो प्रजा का राजा से प्रेम है तो वो ऐसा नहीं है कि प्रेम कर रहे हैं। इसके बाद अधिक विद्यान आचार्यम, यह एक और गोपियां कहती हैं कि जो शिष्य लोग होते हैं, छात्र होते हैं, तो गुरु जी के घेरे रहते हैं, खूब पानी लाते हैं, वो करते हैं, सेवा करते हैं, सब करते हैं। ये ही विद्या प्राप्त हो जाती है, बस खत्म। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो लगता है कि गुरु जी को लगता है कि अरे ये तो इर्द-गिर्द हमेशा पानी देते हैं, उसे प्रेम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अधिक विद्यान आचार्यम, विद्यार्थी लोग, शिष्य लोग, उनको विद्या मिल गई, पढ़ाई पूरा हो गया, विद्या सीख लिए, तो बस अपने घर चले जाते, छोड़ देते हैं। ऋतिजो दक्षिणम, ऋतिक होते हैं ना पुरोहित, खूब यज्ञ कराते हैं, वो कराते हैं, कराते हैं, उधर लगे रहते हैं, लेकिन यही दक्षिणा मिल गया, बस बांध लिए चावल फिर नहीं देखते हैं उनका क्या होगा। लगता है कि उस यजमान कहते हैं ना कि वो तो बड़ा प्रेम कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, पुरोहित हैं, हमारे हित में लगे हैं, लेकिन ये ही उनको दक्षिणा मिल गया, दान मिल गया, बस चले। खगा बीत फलम वृक्षम भुक्ता चातुर्य गृहम, और पक्षी लोग तब देखे ना फल आता है तो खूब उसी में बैठे चे 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 करते रहते हैं, उड़कर कहीं नहीं जाते हैं। उधर ना फल आता है किसी पेड़ में, विशेषकर पीपल का पेड़ देखे है ना, पीपल छोटा छोटा पकता है तो उसी में एकदम घेरे रहते हैं पक्षी लोग। लेकिन जो ही फल समाप्त हुआ, मौसम समाप्त हुआ, बस उड़ जाते हैं, उस पेड़ के तरफ नहीं देखते हैं। तो पक्षियों का जो पेड़ के प्रति प्रेम है, वह ऐसा नहीं है कि प्रेम है, उनको कुछ वहां से फल चाहिए, फल मिल गया बस, उस वृक्ष की तरफ देखते नहीं। खगा बीत फलम वृक्षम भुक्ता चातिथयो गृहम, और घर में अतिथि लोग आते हैं कभी कभी, खूब पूछते हैं, लड़का शिक्षक पढ़ता है ना, बच्चे को पूछते रहते, खूब समाचार पूछते हैं, यह कैसे है, लड़की पढ़ती है, लड़का ठीक से पढ़ता है ना, पूछते रहते हैं, बच्चे को कहलाते हैं, कैसा है, ठीक स्वास्थ्य है ना, तो गृहस्थ समझता है कि हमारे अतिथि बहुत प्रेम कर, लेकिन ये ही वो खा लेते हैं, भोजन मिल गया बस। अब कुछ जो अतिथि लोग आते हैं, बच्चों को पूछते हैं ना, कैसा बच्चा है, ठीक है, स्वस्थ है ना, ऐसा ऐसा पढ़ाई ठीक से करता है ना, तो गृहस्थ को लगता है कि बड़ा है, बच्चों से हमसे प्रेम कर, लेकिन भोजन मिल गया, जब तक खाए नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन भोजन ये ही कर लिए बस अपने चलते पर। दग्धम मृगा सथारण्यम, जब वन होता है उस रूप से हरिण और पशु निवास करते हैं, पक्षी निवास करते हैं, तो वन को अरण्य को तो लगता है कि ये पशु हमसे बड़ा प्रेम कर रहते हैं, लेकिन जो कभी आग लगती है जंगल में तो पशु लोग क्या करते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि प्रेम होता तो उसमें वो जल जाते ना, तो घास है तो खूब खा रहे हैं, वो रहे उसमें विहार कर रहे हैं, और जब आग लग गया जंगल में तो पशु लोग क्या करते हैं, तो पशुओं का ऐसा लगता है कि बड़ा प्रेम कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन आग लगता है तो पशुओं का जो वनों के प्रति प्रेम है वह प्रेम नहीं है, कुछ काम है, घास वहां मिल रहा है, कुछ तकलीफ आया तो छोड़ सकते। भुक्ता रतांश प्रियम, जारो भुक्ता रतांश प्रियम, ऐसे भागवत में कोट कहा गया है, और गोपियां ही कह रहे हैं कि पर उपपत्ति होते हैं किसी स्त्री के, एकदम मतलब एकदम मतलब पर्दाफाश ही करती हैं, गोपियां कहती हैं कि जा रहा उपपति, कुछ स्त्रियों के अपने पति के अतिरिक्त भी कुछ पति होते हैं, उपपति कहते हैं ना, इसमें जार शब्द लिखा हुआ है, अपने पति के अतिरिक्त दूसरा, तो कभी कभी स्त्रियां उनसे उनके साथ सहवास करती हैं, तो सहवास के क्रम में अभी स्त्री की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई रहती है, वह असंतुष्ट है, सेक्सुअली वो सेटिस्फाइड नहीं है और पुरुष सेटिस्फाइड हो गए किसी कारण से, पता नहीं वो कैसा विज्ञान है जो शासन। तो अभी स्त्री की इच्छा है कि साथ में रहे, लेकिन उसका वो चला जाता है, छोड़ देता है, चाहे वो स्त्री कितना भी पुरुष के प्रति आसक्त है, अनुरक्त है, लेकिन वो पुरुष का काम बना छोड़ कर चला। यह दुनिया का स्त्री प्रकार का प्रेम, इसमें कोई बहुत तथ्य नहीं होता है। प्रेम का नाटक किया जाता है, नाटक इसलिए किया जाता है किसी प्रयोजन के लिए, अर्थ सिद्धि के लिए, और सिद्धि जो हो जाती है, प्राप्त हो जाता है, नाटक भी बंद हो जाता है। कम से कम आप लोग ड्रामा खेलते हैं तो काम है, तब तो ड्रामा काल तक तो करते ही रहते हैं ना, लेकिन ड्रामा भी बंद हो जाता है। जानते हैं ना, स्त्री पुरुष में झगड़ा हो जाता है, माता पिता में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता रहता है, तो ड्रामा भी बंद हो गया। ये कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, वो भी नष्ट हो जाता है। इति गोप्य ही गोविंदे गत वाक काय मानस कृष्ण दूते ब्रज में आते उद्धवे क्षेत्र लौकिक। इसके बाद अन्य गोपियों का धैर्य समाप्त हो गया और यह भी नहीं रहा कि कोई अतिथि है, दूसरा व्यक्ति है, एकदम जोर जोर से रोने लगी। कृष्ण की याद आ गई, कृष्ण की याद आते थे हम लोग कृष्ण के लिए, जिसके लिए हमने सब कुछ अपना छोड़ दिया, अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, वेद मार्ग को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर जिस कृष्ण के प्रति हम लोग रहेंगे, वे कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। इतना याद है, घर कैनु बाहर और बाहर कैनु घर है, पर कैनु आपन आपन कैनु घर है। कुपलियां कही है कि घर कैनु बाहर है, जिसके लिए जो अपना घर था वो तो हमारे लिए पराया घर हो गया। घर कहीं बाहर, सोचते हैं ना, घर जो अपना घर था वो पराया का घर, घर कहीं बाहर और बाहर कहीं घर है, और जो पराया घर था दूसरा था उसे हमने अपने लिए किया। पर कहीं आपन आपन कहीं पर जो दूसरे थे उसको हमने अपना बना लिया, और अपने जो माता थे, पिता थे, भाई थे, बंधु थे, उसको सब त्याग कर दिया। ये सब जिस कृष्ण के लिए किया वो कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो रोने लगी, इतना रोने लगी कि अब संवाद ही त्यक्त लौकिका गायंत प्रिय कर्माणी रुणत शत हृदय। कृष्ण के विविध लीलाओं का गान कर ले, कृष्ण के गुणों का गान कर ले, कृष्ण कितने महान है, कृष्ण के प्रति हमने, और उनको रोने लगी। तस्य संस्मृत संस्मृत यानी कौशेर बाले, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में जो भगवान ने लीला की, उन लीलाओं को याद करके गोपियां मूर्छित शुद्ध हो गईं। उसे सभी गोपियां थीं सम्मिलित रूप से। उसी समय क्या है, गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी एकदम विह्वल हो रहे हैं इनके प्रेम को देखकर, उद्धव जी एकदम पानी पानी हो रहे हैं। उस समय समझ सके गोपियों के महत्व को, वो समझते है कि हम लोगों का जो मथुरा के लोगों का जो प्रेम है वो एकदम नगण्य है उस तुलना में गोपियों के, ब्रजवासियों के। ऐसा गोपियां एकदम रो रही थी और तो एकदम हक्का बक्का हो गए उद्धव जी, उनको समझ नहीं मैं क्या कह सकता हूँ। उसी समय काचित मधुकरम दृष्टवा ध्यायंती कृष्ण संगमम, ऐसा जो रोए तो किसी एक गोपी ऐसे रो रही थी और कृष्ण के का ध्यान कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कृष्ण हमसे कभी मिले थे तो संगम का ध्यान कर रहे, मिलन का। प्रिय प्रस्तम दूतम कल्पयित्वा इदम भवेत्। उसी समय एक भ्रमर था, मधुमक्खी मधुकर, वो श्रीमती राधा रानी के चरणों पर आकर बैठ गया। श्रीमती राधा रानी के शरीर से दिव्य सौरभ निकलता रहता है, तो सौरभ के लोभ से कोई एक छोटा सा मधुकर भ्रमर आकर पैरों में अंगूठे के पास बैठ गया। तो श्रीमती राधा रानी को ऐसा भाव हुआ कि यह भगवान का दूत है और मेरे पैर पकड़कर मुझे प्रणाम कर हमको मना रहा है। वो उनको श्रीमती राधा रानी को यह लगा कि मैं तो कृष्ण को भगा दी हूँ, चिंता कर रही है मान की भावना में, और उसी समय एक भ्रमर बैठ गया तो उनको लगा कि यह भंवरा कौन है, कृष्ण का दूत है और वह दूत हमको मना रहा है, हमको पैर पकड़ रहा है कि राधा रानी अपमान मत करो, कृष्ण से मिलो कृष्ण से मिलो, ऐसा करते यह करके। तो यहीं से उस भ्रमर को भंवरे को संबोधित करके श्रीमती राधा रानी ने कुछ गीत गाया है, कुछ उक्ति है, प्रलाप है, प्रजल्प है। वो कोई दूत नहीं था, अरे वो तो भावरा था, मक्खी था, मधुमक्खी, उससे सुगंध निकले जाकर बेचारा बैठ गया था। लेकिन श्रीमती राधा रानी कहती है मधु पर कीतव बंधु मासी माँ सांघ्री सपत्नी। राधा रानी ने कहा कि हे मधु पर मधु पीने वाले भ्रमर, मेरे पैर का स्पर्श मत करो, मेरे पैर को मत पकड़ो, मुझे प्रणाम मत करो, मुझे मनाओ मत। क्योंकि तुम्हारे जो उसे पीला होता है ना, उसमें बाल होता है, मूछे होती है उस भ्रमर में, छह पैर होता है, उसमें बाल होता है छोटे छोटे होते हैं और वो पीला होता है। तो श्रीमती राधा रानी को ऐसा लगा कि मथुरा में अथवा यहाँ पर वृंदावन में चंद्रावली इत्यादि सखी का कृष्ण आलिंगन किए हैं, तो आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाए हैं कृष्ण, और कृष्ण के जो माला है वैजयंती माला कृष्ण पहने हुए, और सामने वाली जो गोपी अथवा मथुरा की गोपी कोई उसके वक्षस्थल पर छाती पर केसर लगा, तो केसर लग गया भगवान के माला में, और यह भ्रमर क्या माला पर बैठा हुआ, और माला पर बैठने से क्या हुआ, केसर इसके मूछों पर लग गया, तो इसका पीला हो गया है। तो कह रहे कि अभी मैं देख रही हूँ कि चंद्रावली अथवा किसी अन्य गोपी का कृष्ण ने आलिंगन किया है, आलिंगन समझते हैं हृदय से लगाया है, तो उसके हृदय पर जो अंगराग लगा हुआ था, केसर लगा हुआ था, वो केसर लग गया कृष्ण के माला में, और तुम वहां पर जाकर बैठे हो, तो तुम्हारे मूछों पर, तुम्हारे बालों पर जो चंद्रावली अथवा अन्य किसी गोपी का केसर है लगा हुआ है एकदम डायरेक्ट, और तुम हमको मना रहे हो, तुम कह रहे हो कि कृष्ण केवल मुझसे प्रेम करते हैं, दूसरे से नहीं करते हैं, या कह सकते एकदम प्रत्यक्ष ऐसा, इसलिए तुम मेरे कुछ तुमने उस स्पर्श किया है, इसलिए तुम स्पर्श मत करो, मेरा स्पर्श करने की जरूरत, मेरा पैर को पकड़ो मत, तुम मनाने का प्रयास मत करो, मैं मानने वाली नहीं, तो हमारे पैर से उठ जाओ, जाओ जहाँ जाना। तो उसका तिरस्कार तो यहाँ से चालू होता है, ये इसको भ्रमर गीत कहते हैं, और इसमें पुलरल मैंने गोपी उवाच कोई एक गोपी कही है, नाम नहीं लिखा है, आप लोग जानते हैं श्रीमद भागवतम ने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया, राधा शब्द लीला का वर्णन किए हैं लेकिन राधा शब्द का उन्होंने उच्चारण नहीं किया है। तो यहाँ पर उन्होंने गोपी कहा है, पूरे श्रीमद भागवतम में केवल यशोदा जी का और रोहिणी जी का नाम है, और किसी गोपी का, आप जितने गोपियों का नाम सुनते हैं किसी का नाम श्रीमद भागवतम में नहीं आया। ऐसे मैंने सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का ही नाम नहीं लिया है तो है ही, लेकिन उसे किसी का नाम ललिता विशाखा जितनी सखियों का नाम सुनते इसमें वर्णन नहीं किया गया। यहाँ से यह भ्रमर गीत प्रारंभ होता है इसी प्रसंग को लेकर, और यह उत्कृष्टतम प्रेम राज्य की जो जिसको प्रेम कहा जाता है, शुद्ध विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति का, तो इससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं, सबसे श्रेष्ठ यह माना जाता है। इस पर बहुत सा साहित्य में सबसे किसी विषय वस्तु पर लिखा गया है आज तक, तो इसी पर लिखा गया है, किसी एक विषय वस्तु पर जितनी रचनाएं हुई हैं तो सबसे ज्यादा रचना इसी पर हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर गोपियां और उद्धव जी का जो संवाद है उसमें किसी एक भी व्यक्ति ने उद्धव जी का पक्ष नहीं लिया है, उद्धव जी की बात को कोई सपोर्ट किया हो, एक भी व्यक्ति नहीं। जितने लोग लिखते हैं तो सभी गोपियों का ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ भ्रमर गीत है, भ्रमर ने गाया नहीं, भ्रमर को संबोधित करके उसके लिए उसको संबोधित करके उसको एड्रेस करके यह गीत गाया गया है, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहते हैं। तो यह तो बहुत रहस्यमय बात है। उद्धव जी वहाँ पर कुछ दिन तक निवास किए, ब्रज में निवास किए, और फिर उद्धव जी यहाँ से विदा हुए। तो विदा होते समय बहुत लोगों ने उपहार दिया, कुछ नंद बाबा ने दिया, माँ यशोदा ने दिया, गोपियों ने दिया, और उसको लेकर गए। उद्धव जी जब गए मथुरा में पहुंचे तो अब तक तो उद्धव जी का अभिमान बिल्कुल गल गया था। उद्धव जी में अब जो पहले जो अभिमान था कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, तो सब अब नहीं रहा। अब वे गोपियों के महत्व को, ब्रजवासियों के प्रेम को समझ चुके थे और उन्होंने कहा है जब अहो युजम पूर्णार्थो भवत्यो लोक पूजितम वासुदेवी भगवती यासाम मनः यासाम इति अर्पितम मनः। उन्होंने कहा अहो युजम पूर्णार्थो, इस जगत में सबसे महान व्यक्ति उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग हैं, आप गोपियां हैं, लोक में इतना पूजित कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि कृष्ण में आपकी इस तरह की अर्पित मति है, ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया। कोई ऐसा भगवान का उतना प्रिय भक्त नहीं हो सकता, भगवान से प्रेम करने वाला उतना कोई नहीं हुआ जितना गोपियां हैं आप लोग हैं। जो कुछ किया जाता है, दान किया जाता है, व्रत किया जाता है, और भी होम जप सत्कर्म किया जाता है, इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि भगवान के कृष्ण के प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। जो कुछ सत्कर्म जितना भी किया जाता है, और आप लोगों में आने जो प्राप्त है, उद्धव जी ने भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनि नाम दुर्लभा। आप लोगों ने गोपियों जैसे भगवान से प्रेम किया है, भगवान की जो भक्ति की है, वह बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके एक छोटे से अंश को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यासां कृष्णे भक्ति प्रवर्तां दृष्ट्या मुनीनां मपि दुर्लभा, मुनियों के लिए भी दुर्लभ। दृष्ट्या पुत्रान पति देहान सुजनान भवना निचर हित्वा वृणी तजम जपत कृष्णाख्यम पुरुषम पर। आपने सब कुछ छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, पतियों का छोड़ दिया, देह का, स्वजनों को, सब कुछ छोड़कर आपने कृष्ण से प्रेम किया है। तो उद्धव जी बहुत प्रशंसा किए गोपियों को। इसके बाद उन्होंने संदेश भी दिया है। उद्धव जी अब तक तो सुन रहे थे राधा रानी इत्यादि ने भ्रमर को संबोधित कर जो भ्रमर गीत गाया उसका सुने। इसके बाद उद्धव जी जो भगवान ने संदेश दिया था, लिख कर दिया था, तो गोपियों को दिए नहीं। शिष्टाचार यह था कि वो गोपियों के लिए पत्र था, तो पत्र उनके हाथ में पकड़ा देते, लेकिन भागवत में सब वर्णन किया गया को दिए नहीं, खुद खोले और सबके सामने पढ़ने लगे। देने में रिस्क था, गोपियां इतना रो रही थी, उनको देने पर पढ़ेंगी क्या, उस पास उसे तो भीग जाएगा, शायद पुत जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, इसने दिया नहीं। देने में खतरा था ना, देते इतना लोग रो रहे थे, वो क्या पढ़ पाते, ऐसे तो आंखों से इतना आंसू को दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, नेत्र इतने सजल थे, और दूसरे हाथ में पत्र मिल भी जाता तो उस पर गिर जाता पानी, आंसू गिर जाता तो वो तो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उद्धव जी ने दिया नहीं। व्यक्ति का शिष्टाचार के खिलाफ है, किसी का पत्र है तो उसी को दे देना चाहिए, तो सभी गोपी भगवान ने अलग अलग गोपियों के लिए अलग अलग बातें लिखी थी, नाम लिखकर सबका, ये ललिता यह है, विशाखा लिखी है, संदेश है, चाहे चंद्रावली के लिए सबका नाम लिख, लेकिन सब उठो पर उनको दिया न। और गोपियों का कुछ संतोना तो कुछ हुआ, फिर गोपियां भी अपने विषय पूछे कि क्या कृष्ण हम लोगों को याद करते हैं, उन रात्रियों को याद करते हैं, गिरिराज जी को याद करते हैं जिसने हमने रास लीला की थी, भगवान के साथ प्रति रात्रि को लीला होती थी रास लीला गोपियों के साथ, लेकिन वो विशिष्ट जो रात्रि थी महारास जी शुरू हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन, तो गोपियां कहते हैं कि क्या हम लोगों से ब्रह्मा जी की जितनी बड़ी रात्रि है उतनी बड़ी रात्रि हुई थी, हमने बिहार किया था उन रात्रियों को क्या कृष्ण कभी याद करते हैं, हम लोग कभी याद करते हैं। तो इस तरह से उद्धव जी ब्रज में रहे, गए वापस गए हैं, वहां जाने के बाद उद्धव जी गए तो भगवान से आग्रह करने लगे कि हे भगवान आप मथुरा में मत रहिए, मथुरा में वास्तव में आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उस तुलना में आपसे तो वास्तविक प्रेमी तो रहते हैं ब्रज में रहते हैं, वृंदावन रहते हैं, इसीलिए आप वृंदावन में ही रहिए, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। और उद्धव जी ने खुद अपने विषय में भी कहा है कि मैं भी यहाँ से आता नहीं, ब्रज से मथुरा में आता नहीं, लेकिन मुझ पर एक उत्तरदायित्व था कि गोपियों का संदेश आप तक पहुंचा देना था, यदि यह दायित्व यह उत्तरदायित्व मेरे ऊपर नहीं रहता तो मैं भी यमुना जी के तट पर ही कहीं मैं वहां पर कुटी बनाकर वहीं भजन करता, और मुझे इसका भी भय नहीं, जबकि वहां रहने में बहुत भारी खतरा है, विपद है, वह विपद क्या कि इतना वहां पर लोग रो रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, माँ यशोदा रो रही है, चाहे गोपियां रो रही है, गोप सखा रो रही है, गाय रो रही हैं, कि वहां पर फ्लड का भय है, फ्लड समझ रहे ना, बनने का भय है, रहना खतरा से खाली नहीं, लेकिन वो खतरा भी सह लेता कि मैं भय नहीं करता, मैं भले ही बह जाऊं उनके आंसुओं में, मेरा सब कुछ बह जाए, मेरा सब लूट जाऊं, लेकिन फिर भी मैं वहीं रहता। लेकिन मुझ पर एक उत्तरदायित्व था, यह दायित्व था कि आपका संदेश आप तक पहुंचा देना था, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूं, तो आप चलकर वहीं रहिए, यहाँ रहने की आपको जरूरत नहीं है, यह शुष्क जगह पर मथुरा में रहने की क्या आवश्यकता है आपको, वास्तविक प्रेमी जिसे प्रेम कहा जाता है आपके वहां पर, इसलिए आप वहीं चलिए। तो इस तरह से संक्षिप्त में हम लोग एक बार फिर प्रसादम के बाद ही बैठेंगे, हम यहाँ के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यहाँ जो चीर घाट है और चीर घाट पर एक गोपियों ने